السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن اسمبلی میاں جمشید الدین کاکاخیل کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں. ان کا تعلق حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تھا. جمشید الدین ایک ہفتے سے اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے اور گزشتہ 3 روز سے وینٹیلیٹر پر تھے. جمشید الدین پاکستان میں کرونا وائرس سے 2 روز کے دوران جاں بحق ہونے والے دوسرے رکن اسمبلی ہیں. منگل کو سندھ کے وزیر کچی آبادی غلام مرتضیٰ بلوچ اس وائرس سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے تھے. سندھ اسمبلی کے 9 اراکین میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن صوبہ اسمبلی ساجد جوکھیو, سادیہ جاوید, ڈاکٹر سہراب سرکی, منگلا شرما, تھرپارکر سے رکن صوبہ اسمبلی رانا حمیر سنگھ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے معظم عباسی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو کر گھر میں قرنطینہ میں ہیں. اسی طرح ملیر سے رکن صوبہ اسمبلی غلام مرتضیٰ بلوچ کرونا میں مبتلا رہنے کے بعد منگل کو انتقال کر گئے تھے. اس سے قبل پیپلز پارٹی کے رکن اور صوبائی وزیر سعید غنی, جبکہ جماعت اسلامی کے واحد رکن اسمبلی سید عبدالرشید کرونا کا شکار ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں. واضح رہے کہ اسمبلی کے اجلاس سے قبل تمام اراکین کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں. سندھ اسمبلی کے اجلاس سے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے لڑنا نہیں بچنا ہے. سندھ کے ضلع کشمیر میں 100 سے زائد افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ضلع کی تینوں تحصیلوں کو سیل کر دیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے والوں میں سے بڑی تعداد ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ہے. ادھر صوبے بھر میں کیسز کی تعداد ملک بھر میں سب سے زیادہ یعنی 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں ضلع غزر میں خودکشی کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے. صرف گزشتہ ماہ کے دوران 6 خودکشی کے واقعات رونما ہوئے ہیں, جس میں سے تازہ ترین واقعہ بھنڈر کے مقام پر پیش آیا, جہاں ایک خاتون نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. ماہرین کے مطابق سال 2000 سے اب تک گلگت بلتستان میں تقریباً 400 افراد نے اپنی زندگیوں کے چراغ کل کیے ہیں, جن میں زیادہ تر تعداد خواتین کی ہے. اور قطر ایئر ویز نے پاکستان کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے. پاکستان نے حال ہی میں اپنی بین الاقوامی پروازیں بحال کی تھیں, لیکن ایک بڑے بین الاقوامی کیریئر قطر ایئر ویز نے ایک ہفتے کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں. ایئر لائن نے سول ایویشن کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے. حالانکہ ایئر لائن نے وجہ بیان نہیں کی, لیکن اطلاعات ہیں کہ ایتھنز یونین کے لیے پروازوں میں 9 پاکستانی مسافروں میں کرونا وائرس مثبت پایا گیا ہے. پاکستان نے ملک میں آنے والی پروازوں کے لیے اپنے ایس او پیز میں بھی تبدیلیاں کی ہیں, اور اب آنے والے تمام مسافروں کو اپنے گھروں میں تنہائی میں وقت گزارنا ہوگا. ادھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ملکوں میں پھنسے بے روزگار مزدوروں کے رشتہ دار حکومت سے انہیں واپس لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ وہاں طبی سہولتوں کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں. وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ حکومت نے 10 جون تک 20,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا منصوبہ بنایا ہے. خلیجی ملکوں میں پھنسے زیادہ تر پاکستانیوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے باچا خان ایئرپورٹ آنے والی پروازوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے. پچھلے 2 روز میں 450 افراد سعودی عرب سے پشاور پہنچے. ان پروازوں پر 24 میتیں بھی لائی گئی ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد میں دھماکے میں امام مسجد مولوی ایاز نیازی کی وفات پر جہاں افغان اعلی حکام نے مذمت کی ہے, وہاں طالبان کی جانب سے بھی مذمتی بیان سامنے آیا ہے. کابل کے گرین زون میں واقع مشہور مسجد وزیر اکبر خان میں گزشتہ شام بم دھماکہ ہوا تھا. دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ مسجد میں شام 7:30 بجے اس وقت دھماکہ ہوا جب نمازی مغرب کی نماز ادا کر چکے تھے. وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں ملا محمد ایاز نیازی بھی شامل تھے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں آن لائن ایجوکیشن کی، جو صورتحال ہے کووڈ 19 کے دوران، اور ہم بات کریں گے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے آن لائن ایجوکیشن کا یونیورسٹیوں کی سطح پر، اور اگر اس وقت ایجوکیشن جاری ہے آن لائن تو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اساتذہ کو، اور ان کے سولوشنز کیا کیا سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فتح مری، ٹیلی فون پر اسلام آباد سے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ہائر ایجوکیشن ہے، وہاں پر آن لائن ایجوکیشن کا کیا سسٹم چل رہا ہے اور کیا مسائل ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر فتح مری صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو، کووڈ 19 سے پہلے کیا صورتحال تھی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں آن لائن ایجوکیشن کی، اور اس وقت جبکہ ساری یونیورسٹیاں جو ہے آلموسٹ آن لائن ایجوکیشن دے رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو کس انداز میں دے رہی ہیں؟
تھینک یو ویری مچ میڈم یاسمین۔ ایک تو ساری دنیا ابھی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، جو کووڈ کی سچویشن ہے اس میں نہ فقط پاکستان کے لیے مسئلہ ہے لیکن ساری دنیا کے لیے مسئلہ ہے، ریجن کے لیے مسئلہ ہے اور ہر سیکٹر کے لیے مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی وہ چیلنجز، وہ مسائل ہیں کہ کس طرح سے تعلیم کو کنٹینیو کیا جائے اور کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ٹائم کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ جیسے آپ نے پوچھا کہ کووڈ کے آنے سے پہلے جو آن لائن ڈسٹینس ایجوکیشن پاکستان میں بڑی لمیٹڈ تھی، کیونکہ پاکستان میں دو یا تین یونیورسٹیاں تھیں جو آن لائن یا ڈسٹینس ایجوکیشن آفر کرتی تھیں۔ ایک تو 70s میں ہم نے بنائی تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جو ڈسٹینس ایجوکیشن دیتی تھی، وہ زیادہ فنکشنل ایجوکیشن پہ فوکس کرتے تھے لیکن اس کے ڈسٹینس ایجوکیشن سینٹر سے اس کے تھرو تعلیم دے رہے تھے۔ اسی طرح سے ورچوئل یونیورسٹی تھی جو 2000 کے بعد بنی ہے، اور وہ ان کے آن لائن ٹی وی ہیں اور ان کے جو یہ ورچوئل سسٹم آف ٹرانسمیٹنگ ایجوکیشن ہے اس کے تھرو، اور اس کے علاوہ ایک آدھ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بھی کچھ آن لائن کورسز کر رہے تھے۔ ایک تو ہم ابھی اس پروسیس میں تھے کہ آن لائن اینڈ ڈسٹینس ایجوکیشن کی پالیسی اور اسٹریٹجی کو فائنلائز کریں، اس پہ کافی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اور یونیورسٹی نے مل کے کام کیا، اور پھر جو اوپن یونیورسٹی لنڈن ہے اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر رہے تھے، لیکن اتفاق سے اسی دوران ہی یہ کووڈ کی سچویشن آئی، تو کووڈ کی وجہ سے فزیکلی یہ پاسبل نہیں رہا کہ یونیورسٹیوں میں اسٹوڈینٹس وہاں فزیکل کلاسز اٹینڈ کر سکیں، ہاسٹلس میں رہ سکیں، تو وہ یونیورسٹیاں کیونکہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی اس میں سارے تعلیم ادارے گورنمنٹ نے بند کیے ہے، اور ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور کووڈ پھیلنے کا خطرہ ہے یا رسک ہے تو ان کو منیمائز کیا جائے۔ تو اسی دوران پھر یہ تھا کہ کس طرح سے اس چیلنج کو فیس کیا جائے۔ ہمیں پتا تھا کہ پاکستان میں ایک تو ہر جگہ پہ ریموٹلی لوکیٹڈ ایریاز میں انٹرنیٹ کا ایکسیس ایک چیلنج ہے، اسٹوڈنٹ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا ہر جگہ پہ، وہ 3G اور 4G ایون 2G کا ہونا وہ ایک مسئلہ تھا اور ابھی تک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس ڈیوائسز ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، وہ ابھی تک ہے اس پہ چیلنج کا۔ تیسرا یہ تھا کہ یونیورسٹیز اور ٹیچرس کس طرح سے ریڈی ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن تو ڈائریکٹلی تعلیم خود نہیں دیتا، یونیورسٹیاں تعلیم آفر کرتی ہیں، یونیورسٹیاں جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹ کو رجسٹر کرتی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کا کام ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے تاکہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کمپرومائز نہ ہو اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے وائس چانسلرس کی کمیٹی ہوتی ہے جس میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرس کے ممبر ہیں، اور پھر ہماری ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز ہیں 12 قریب ہیں، میڈیکل کاؤنسل ہے، انجینئرنگ کاؤنسل ہے اور نرسنگ کاؤنسل ہے، اس طرح کے اور کاؤنسلز ہیں وہ ہیں، پھر پروونشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں کہ کون سے وہ منیمم اسٹینڈرڈ ہیں جو یونیورسٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرنے سے، آن لائن ایجوکیشن شروع کرنے سے پہلے کم سے کم وہ منیمم اسٹینڈرڈ میٹ کر لے۔ اس میں ایک تھا کہ یونیورسٹی کی ریڈینس کیا ہے، یونیورسٹی کی ریڈینس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے پاس لرننگ مینجمنٹ سسٹم انسٹال ہو، ان کو پتا ہو کہ ان کے ٹیچرز لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو اسٹوڈنٹ کو رجسٹر کریں، اپنا کورس مٹیریل وہاں پہ اپلوڈ کریں، اور اپنے سارا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے آپ کو پتا ہے کافی کمپوننٹس ہیں۔ اور پھر یہ تھا کہ آن لائن ایجوکیشن کی کوئی اکیڈمک کاؤنسل یا اسٹیٹوٹری باڈیز جو ہیں वो उसके अप्रूवल दे दें, क्योंकि पहले तो वो फिजिकल एजुकेशन करते थे, फिजिकली स्टूडेंट प्रेजेंट होते थे, तो वो बिल्कुल क्लियरली अनाउंस कर दें कि उनकी ऑनलाइन एजुकेशन का तरीका क्या है, उनकी टाइमिंग्स क्या है, कोर्स का आउटलाइन क्या है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइम पे क्लासेस होंगे, किसी तरह से मिड टर्म असेसमेंट की जाएंगी, किस तरह से लेबोरेटरी का काम है उसको, किस तरह से उसका नॉर्मल बदल क्या होगा, किस तरह से फाइनल असेसमेंट की जाएंगी। तो हमने कहा यूनिवर्सिटी की रेडीनेस, एक ये हमने बेसिक रिक्वायरमेंट सेट की। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने ये सेट की, हायर एजुकेशन कमीशन और सारी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर, वाइस चांसलर साहबान और जो सीनियर एक्सपर्ट थे सारे दोस्तों ने, कि हमारे टीचर्स, चूंकि ये एक नया काम है, क्लास में तो जाके पढ़ाना एक तरीके से होता है, लेकिन आप जब डिस्टेंस पे हैं, ऑनलाइन है, वो लेक्चर रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वो पीपीटीज या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपलोड कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन आंसर्स कैसे होंगे, हैंड रेज कैसे करेगा स्टूडेंट, किस तरह से सवाल पूछ सकता है, इंटरेक्शन कैसे होगी, तो उस पे भी हमने कहा कि ये टीचर्स की रेडीनेस, वो भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि उनके टीचर इन सारे बातों को समझते हैं। फिर उसमें HEC ने खासतौर पर एक स्पेशल ग्रांट भी दिया है सारी यूनिवर्सिटियों को, 10 million rupees टू ईच पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, जो हमारे पास 15-16 यूनिवर्सिटी आए उन सबको हमने ये पैसे दिए, ताकि वो एक तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर दें और फिर अपने टीचर्स की वो उस तरह की ट्रेनिंग भी कर दें। और फिर हमने, हमारे पास आपको पता है कि नेशनल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन है, उन्होंने भी उनको ये ऑफर किया है कि कोई भी अगर उनको ट्रेनिंग की नीड है तो वो उनको एड्रेस कर दें। फिर एक हमने टेक्नोलॉजी सपोर्ट कमेटी भी बनाई थी, टेक कमेटी उसको कहते हैं, कि जिन यूनिवर्सिटियों को कुछ मसाइल आ रहे हैं तो वो टेक कमेटी से रब्ता करें और उनसे। फिर हमने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की कि आपका स्टूडेंट भी रेडी है, उसकी रेडीनेस की भी सर्वे करें, स्टूडेंट से पूछें कि वो अभी कहाँ पे लोकेटेड हैं, उनके पास इंटरनेट की एक्सेस है नहीं है, और उसमें फिर टेलकोस के साथ नेगोशिएट करके उनको इकोनॉमिकल बंडल्स, जो एजुकेशनल बंडल, ताकि वो डेटा को, हमारा ख्याल था कोई 50 GB के करीब उनकी डेटा अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग की पर मंथ रिक्वायरमेंट है, तो उसके पैकेजेस आपको पता है पाकिस्तान में काफी जो टेलकोज हैं वो देती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज उनसे नेगोशिएट करें और हम उनको मदद भी कर सकते हैं कि वो अच्छे टेलको पैकेजेस उनको दें, ताकि स्टूडेंट ये ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस कर सकें। और फिर कुछ जगहों पे अगर बिल्कुल एक्सेस नहीं हो सकता तो थ्रू कोरियर और थ्रू पोस्टल सर्विसेज या थ्रू अदर मीन्स उनको वो मटेरियल CDs पे रिकॉर्ड करके, USBs में सेव करके या किसी तरीके से पहुंचाया जाए। ये सारा एक मेरा ख्याल है बड़ा जायंट चैलेंज था, बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव इशू था, जिसको हमने कोशिश किया है यूनिवर्सिटीज के लीडरशिप्स के साथ मिलके ताकि उसको एड्रेस कर सकें। कई मीटिंग्स किए हैं, इसकी हमने गाइडलाइंस इशू किए हैं, वो अगर आप HEC की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ रखी हुई हैं, वो अपलोडेड हैं। और फिर ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, हमारा काम तो ये था कि हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दें, और फिर हर यूनिवर्सिटी जाहिर है अपनी सूरत हाल को नजर में रखते हुए, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, अपने स्टूडेंट और उसकी आउटरीच को देखते हुए, वो फिर अपनी पॉलिसीज मरतब करें और उसको आगे चलाएं। और अभी जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो सकती है, उनके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, गूगल है, Zoom है, MS Teams है या जो भी है, तो वो उसके लिए भी हमने उसकी लाइसेंस MS Teams के सबको दे दिए हैं। और आपको पता है हमारा एक फन का नेटवर्क है, फाइबर ऑप्टिक एजुकेशन की स्पेसिफिक लाइन है डेडिकेटेड, उसके थ्रू हमने ये MS Teams की एक्सेस सारी यूनिवर्सिटीज को दे दी है। तो ये है सूरत हाल जिसमें अभी तक हम हैं। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इम्तिहान को किस तरह दिया जाए, और फाइनल के अगर थीसिस के कोई डिफेंस है वो किस तरह से किया जाए, उस पर हमारी डिस्कशन चल रही है।
तो डॉक्टर फतेह मरीज साहब, ये बताइए कि अब आप अगर ये COVID-19 जारी रहता है या बाद में भी, इसकी अहमियत तो अब वाजे हो चुकी है कि ऑनलाइन एजुकेशन किसी न किसी अंदाज में अब जारी रहनी चाहिए, किसी भी वक्त इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो क्या इस पर भी आप लोग गौर कर रहे हैं कि ब्लेंडेड एजुकेशन की जाए, ऑनलाइन और फिजिकल प्रेजेंस के साथ एजुकेशन आइंदा आने वाले दिनों में, डिजिटलाइजेशन कैसे कर रहे हैं आइंदा के लिए, सोच रहे हैं या?
मेरा ख्याल इससे कोई इनकार नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक जरिया है तालीम का, लेकिन इसमें कंसर्न ये है कि हम उस तरह का सिस्टम बनाए ताकि इससे क्वालिटी कम्प्रोमाइज ना हो, इससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। अगर ऑनलाइन को वैसे ओपन कर देते हैं जिसमें फिर लोग कम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ अगर वो एज अ बिजनेस उसको शुरू करते हैं, तो उसका स्टूडेंट को नुकसान होगा। तो हमारा ये है कि हम इसमें बड़े केयरफुल हैं, और अभी हम ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन की पॉलिसी बनाने के लिए भी कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसमें हम एक अच्छा रोबस्ट रेगुलेटरी सिस्टम बनाएंगे ताकि वो फिर हम ऑनलाइन को अलाउ कर सकें। तो अभी हमने ऑनलाइन एजुकेशन को जनरली अलाउ नहीं किया है, सिर्फ कोविड स्पेसिफिक ऑनलाइन एजुकेशन को परमिशन दिया है ताकि वो इस कोविड की सूरत हाल में ऑनलाइन एजुकेशन को इम्पार्ट कर सके। लेकिन उसको भी हमने रेगुलेशन डाल दी है कि वो मिनिमम एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड जरूर हासिल करें, इसके बगैर वो तालीम की क्वालिटी को मुतासर न करें।
तो इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं?
इसका फ्यूचर ये है कि मेरा ख्याल है ये इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसमें काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जो एक्सपीरियंस लेंगी और अपनी कैपेसिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर लेंगी तो वो फिर ब्लेंडेड एजुकेशन की तरफ से तरफ जा सकती हैं, और जहाँ पे लगेगा कि ये इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम्प्रोमाइज हो रहा है और वो उनको जो रिक्वायर्ड तालीम है जिसके लिए वो अपना टाइम देते हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स अपने पैसे लगाते हैं, वो अगर रिक्वायर्ड क्वालिटी नहीं मिलती और वहाँ पे अगर कोई एजुकेशन है तो उनको जाहिर है अलाउ नहीं किया जा सकता।
तो अभी वाजे तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो तय हो चुका या एक नजर आ रहा है कि पोस्ट कोविड सिचुएशन में किसी ना किसी अंदाज में ऑनलाइन एजुकेशन तो अब चलेगी।
बिल्कुल ऐसे ही है, ऑनलाइन एजुकेशन विद रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स।
जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर फतेह मरी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद के, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस बारे में कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन, खास तौर पर हायर एजुकेशन की डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तालिबे इल्म और असातिज़ा इस प्रोसेस से कैसे गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान में हायर एजुकेशन की डिजिटलाइजेशन का मुस्तकबिल क्या हो सकता है कोरोना की वबा के बाद। इस बारे में गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वफाकी यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के रेक्टर जनाब नईम तारिक। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम तारिक साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
नईम तारिक साहब, आपकी यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तो आजकल बहुत मांग है, और बताइए हमारे सुनने वालों को कि आपने बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया था जिस पर अब ज़रूरत पड़ रही है एजुकेशन वालों को, कि ऑनलाइन एजुकेशन भी एक ऐसा ज़रिया है जो कि बहुत अहम है और इसकी अहमियत दिन ब दिन अब बढ़ेगी ही। तो बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी कब कायम हुई, कैसे काम कर रही है इस वक्त, और ये दूसरी यूनिवर्सिटियों को एक मॉडल के तौर पर किस तरह अपने आप को पेश कर रही है उनके लिए।
जी अलहम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि आजकल के दौर में तो हमारा वर्चुअल सिस्टम काफ़ी जोर पकड़ता जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी सन 2002 में शुरू की गई थी और शुरू में तो इसमें ज़्यादा एक नया सिस्टम था, सारा कुछ नया था, इसमें काफ़ी मुश्किलात आई, इसमें कुछ अच्छे पीरियड भी आए, लेकिन सन 2014 से ऑनवर्ड्स उससे आगे का जो भी पीरियड है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरक्की ही की है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें अब दाखिला लेना शुरू हो गए हैं। अब तक हम तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों को एडमिशन दे चुके हैं 2002 से लेके अब तक, और इसमें से लगभग 65,000 बल्कि इससे ज्यादा ही बच्चे हमारे पास आउट हो चुके हैं, डिग्रीज हासिल कर चुके हुए हैं और अपने अपनी जगह पे कुछ मजीद तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ जॉब में चले गए हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, और इस वक्त भी हमारा जो सेमेस्टर है उसमें तकरीबन लगभग 70,000 बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी जो सिलसिला हुआ था COVID-19 का, अल्लाह के फजल से हमारा जो फॉल का सेमेस्टर था वो लॉकडाउन से जरा पहले ही खत्म हुआ था, और फिर हमने सारा अपना बंदोबस्त किया, देखा क्या है क्या नहीं है, और हमने अपना स्प्रिंग का एडमिशन भी अपने टाइम के ऊपर ही किया, और इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो स्प्रिंग का सेमेस्टर बाकायदगी से लेकर चला रही है। और हमें उम्मीद थी कि हम इसमें अगर 10,000 बच्चा भी एडमिशन इसमें ले लेंगे तो एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट होगी, लेकिन इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने 13,000 से ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिया है, और हमारा जितना भी स्टाफ है वो घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम के बेसिस के ऊपर इन बच्चों के साथ वन टू वन बेसिस के ऊपर इनको हैंड होल्डिंग करा के इनके साथ असेसमेंट सारा कुछ पढ़ाई का लिखाई का जितना भी दौर है वो चल रहा है स्मूथली चल रहा है।
तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या कुछ पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं?
हमारे बीएस फोर इयर्स के बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं, बीपीए है, साइकोलॉजी है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा हमने लाइफ साइंसेस को भी इंट्रोड्यूस किया था 2014-15 में, और उसमें चूंकि लैब की भी रिक्वायरमेंट होती है, वेट लैब्स होती हैं, तो हमने मुख्तलिफ शहरों में वेट लैब्स भी बनाई हैं, और इसके अलावा हमने एक स्मार्ट लैब और एक मोबाइल लैब का भी इंट्रोडक्शन दिया है अपने मुल्क में। हमने एक बस में लेके उसके अंदर पूरी एक लैब इस्टेब्लिश की हुई है जो शहर शहर जाती है, वहाँ पे खड़ी होती है, उसके इलाके के आसपास के बच्चों को लैब की जरूरियात सहूलियात मुहैया की जाती है। इसी तरह हमने एक इक्विपमेंट को एक खास तौर से बंद करके जो ट्रॉलीज हैं, स्पेशलाइज ट्रॉलीज हैं, उनके जरिए हम मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं। उस शहर में हमारा कैंपस है वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, वहाँ पे लैब लगाई जाती है 15-20 दिन के लिए, हमारा अपना स्टाफ साथ आता है और उस इलाके के बच्चों को जो है वो लैब की सहूलियात मुहैया की जाती है। तो इस तरह से हमने हमारा जो एक मोटो है कि एजुकेशन एट योर डोरस्टेप, हम उसको भी पूरा कर रहे हैं और इसको भी हम मजीद इस अगले सालों में इस वेट लैब को और दूसरी लैब्स को बढ़ाने का पूरा पूरा हमने इसका इरादा किया हुआ है।
तो इस वक्त आपके कितने कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान में?
हमारे तक 200 से ज्यादा कैंपस हैं, जिसमें 30 के करीब हमारे अपने कैंपस हैं जो वीयू ने खुद बनाए हुए हैं और बाकी प्राइवेट पार्टनर्स हैं। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में फैले हुए।
तो इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी की सतह के ही इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेज या स्कूल लेवल पर भी आप लोग मदद कर रहे हैं?
नहीं, उसमें इसमें ज्यादातर जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो जो किसी जमाने में कंप्यूटर कॉलेजेस वगैरह खुले थे फिर बंद हो गए थे, या कोई अकेडमीज खुली हुई है वो डेडिकेटेड हैं, कुछ टर्म बेसिस के ऊपर हैं, तो ज्यादातर इसमें प्राइवेट लोग हैं जिनका जिनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह हैं या वो अकेडमीज हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं। उनको एक खास एमएल के जरिए उनको हमें पूरा एप्लीकेशन आती है, उसका हम जांच पड़ताल के बाद जब स्टेटस दे देते हैं तो फिर वो हमारा प्राइवेट पार्टनर बन जाता है। इट्स अ फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है, और जब ये मसला शुरू हुआ था तो एचईसी के चेयरमैन डॉक्टर बनोरी ने हमसे रब्ता किया था, मुझसे रब्ता किया था, और हमने इमीडिएटली इसमें हमने कहा था कि जी हम अपना एलएमएस जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज को हम 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस के ऊपर भी देने पर तैयार है। इसके अलावा एचईसी ने और भी बड़े प्लेटफॉर्म जरा लिए थे और काफी इसके ऊपर हलचल हुई थी, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आ रही हैं, और उनको क्योंकि अभी तक लॉकडाउन का कोई सिलसिला प्रॉपर पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज क्योंकि एक ही नया सिलसिला है, नया है, बिल्कुल है, इसको करने में कराने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर आ रही है। और इसके अलावा फिर एक और स्टेप आगे जाके एचईसी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक कमेटी कायम की है जो एक इंटरनेशनल बल्कि नेशनल लेवल के ऊपर देखती है कि स्कूल से लेके केजी लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल पीएचडी तक हम इसको एलएमएस को वर्चुअल यूनिवर्सिटीज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इससे ऊपर एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और इंशाल्लाह ये तालीम के मैदान में और तालीम के मैदान में एक अच्छा इकदाम होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर ये इसके ऊपर नाफिजुल अमल हो जाता है। पर भी कोई एनजीओ हैं, कुछ और हैं जो स्कूल एजुकेशन में पर ये काम कर रहे हैं वर्चुअल लेवल के ऊपर, तो ऐसा ऐसा जो भी कुछ कमेटीज बनी है, कुछ डिस्कशन हुई है, फिर लेट्स होप, उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा लायमल बनेगा और हम जो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि हमारा अब अल्लाह का शुक्र है कि 18 साल का इसमें तजर्बा हो चुका हुआ है और हमारे साथ के इंटरनेशनल फोरम्स भी हैं, उनके भी हमने पार्टनरशिप मेंबरशिप ली हुई है और उनके साथ भी हम मीटिंग में है, लाइजोन में है, तो उनके लिए उनसे मिलकर भी हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जी,
तो ये बताइए नईम तारिक साहब के क्या फ्यूचर क्या देखते हैं आप वर्चुअल एजुकेशन का या हायर एजुकेशन की डिजिटलाइजेशन का, आने वाला दौर कोरोना के बाद भी कितना तेजी आएगी यूनिवर्सिटियों को और हायर एजुकेशन को डिजिटलाइज करने में?
देखें, ये मैं कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई है, मिली है कोविड की वजह से, कोविड 19 की वजह से, और इसके ऊपर चाहे पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, सारे इसके ऊपर अब गौर कर रहे हैं। आपने तालीम देनी है, चाहे वर्चुअल है, चाहे कन्वेंशनल है, LMS है, कंटेंट का प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए मावल और मददगार ही साबित होगा आइंदा आने वाले वक्तों में। और जितना भी हम इसको डिजिटलाइजेशन कर सकेंगे, इसका हमें ही फायदा होगा, हमारे आने वाली नस्लों को फायदा होगा, हमारे आने वाले बच्चों को फायदा होगा, चाहे वो स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी में है। जी,
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया नईम तारिक साहब। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के रेक्टर हैं, लाहौर से आपने हमसे बात की। फेडरल गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए चल रही है और बड़े अरसे से अपना काम कर रही है, और बेशुमार स्टूडेंट्स को ये अपने इदारे से तालीम दिलवा चुकी है और वो अपने अपने रोजगार कमा रहे हैं या आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका भी।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ऑनलाइन एजुकेशन किसी न किसी फॉर्म में पहले से मौजूद थी, जिसे रिवायती और ऑनलाइन एजुकेशन का इम्तिजाज या ब्लेंडेड एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन अब कोरोना लॉकडाउन के दौरान यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ही नहीं बल्कि स्कूलों तक को ऑनलाइन एजुकेशन पर इन्हिसार करना पड़ रहा है, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सिलसिला अभी कितना अर्सा और चलेगा। इसीलिए तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन एजुकेशन के तरीके अपना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान तालिब इल्मों की तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रह सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट वेमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की वाइस चांसलर डॉक्टर उज़्मा कुरैशी। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटियों में, खासतौर पर ख़वातीन की यूनिवर्सिटियों में, ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला किस तरह अंजाम पा रहा है और हायर एजुकेशन को डिजिटलाइज बनाने का ये प्रोसेस क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है और आइंदा क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो उनसे गुफ्तगु करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़्मा कुरैशी साहिबा।
जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का।
तो बताइए कि इस वक्त तो यूनिवर्सिटी बंद है और ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, तो कैसा सिस्टम जा रहा है आपकी यूनिवर्सिटी का?
कि ये डिजिटलाइजेशन की तरफ तो हम पहले ही जाने की कोशिश कर रहे थे, उस हवाले से हमारी कुछ तैयारी पहले से ही थी। लॉकडाउन से पहले ही हम इस पे काम करना शुरू हो चुके थे, क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो हमारे वैसे भी विजन का एक हिस्सा है, ताकि जो स्टूडेंट्स दूर दराज इलाके में, खासतौर पर हमारी बच्चियाँ हैं और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो ऑन कैंपस नहीं आ सकती, तो हम डिस्टेंस लर्निंग को और डिजिटलाइजेशन को पहले से ही कंसिडर कर रहे थे। लेकिन अभी वो एक प्रोसेस शुरू हुआ था, हमारी इतनी तैयारी नहीं थी कि एकदम से लॉकडाउन हो जाएगा और हमें ये सारे प्रॉब्लम्स और जो ये चैलेंजेस हैं इनको फेस करना पड़ेगा। पहले तो उसके अंदर ये था कि जो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने फौरन एक्वायर किया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए और कोशिश की, और हमारे साथ ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जो भी डिजिटल टूल उनको समझ में था और जो उनके एक्सेस में था, बच्चों के, स्टूडेंट्स के एक्सेस में था, उसको उन्होंने उसके थ्रू अपनी टीचिंग जारी रही। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि आपकी ऑनलाइन लर्निंग रेडीनेस जो है वो बहुत, टीचिंग एंड लर्निंग बहुत जरूरी है कि आप देख लें कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी कनेक्टिविटी है, उन्हें एक्सेस टू इंटरनेट है और उनको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है कि फेस टू फेस की के बजाय वो डिजिटल जो उनका कॉन्टेक्ट है, ऑनलाइन कॉन्टेक्ट है अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, उससे थोड़ा बहुत उनको थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाए। दूसरी तरफ था टीचर्स, हमारे टीचर्स ऑल्दो जानते तो थे कुछ डिजिटल टूल्स को, लेकिन जाहिर है इस तरह से तैयारी नहीं थी कि रेगुलर टीचिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। उस हवाले से जहाँ पर हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिया वहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग भी शुरू साथ ही साथ कर दी, और मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथियों ने दिन रात मेहनत की। इनफैक्ट ईद की छुट्टियों में भी दिन रात टीचर्स जो हैं वो अपनी साइट्स जो हैं वो तैयार करवाते रहे। हमने मूडल लिया था एलएमएस पे अपलोड करते रहे, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते रहे, और जो उनकी मुश्किल थी हम लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप का, उसके अंदर वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते रहे, और जो हमारी आईटी टीम थी वो शाना बशाना हमारी एकेडमिक टीम के साथ काम कर रही है इस वक्त भी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें नए नए चैलेंजेस का फेस करना आ रहा है। कुछ बच्चों के पास कनेक्टिविटी नहीं है, अगर कनेक्टिविटी का मसला हल होता है तो फिर उनके पास लैपटॉप या फोन या पूरे घर में एक फोन है और उसके ऊपर 5 कोर्सेज पढ़ना एक वक्त दरकार होता है, उसके लिए 3 क्रेडिट आवर्स को पूरा करना। सो हमने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस जो लर्निंग है उसके अंदर भी सारे अपने जो जो लर्निंग लेक्चर्स हमने जो रखे हैं वो रखे हुए, ताकि बच्चों को जब भी एक्सेस हो स्टूडेंट्स को तो वो उसमें उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो अभी तो हम इस प्रोसेस से चल रहे हैं यास्मीन, क्योंकि अभी हमें कुछ टाइम लगेगा इस डिजिटलाइजेशन के साथ पूरी तरह से एक कंफर्ट लेवल बनाने का। अभी हम टीचर्स भी लर्न कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख रही है और बच्चे भी सीख रहे हैं कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि पोस्ट कोविड में भी सोशल डिस्टेंसिंग अभी कुछ कम से कम 1 साल तो चलेगी, और इसी तरह की जो प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमें इख्तियार करनी ही पड़ेंगी बहसियत एक तालीमी अदारा। तो उसके लिए ब्लेंडिंग लर्निंग की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स जो हमसे हैं वो अपने लेक्चर्स बाहर हाल रिकॉर्ड करने का एक अपना वो जिसे कहते हैं ना रेगुलर फीचर बना रहे हैं अपनी टीचिंग का, ताकि बच्चे जो क्लासेस में आते भी आएंगे भी इंशाल्लाह तो जब वो वापस जाएं तो उनके पास एक रिसोर्स मौजूद हो हमेशा से, ताकि जो हिस्से उनको नहीं समझ आए तो दोबारा से उस लेक्चर्स को सुन के उनको थोड़ा बहुत जो है डायरेक्शन मिले। तीसरी बात जो हमने बहुत हमें लगा कि हमारा एक यूनिवर्सिटीज का कंसोर्शियम होना चाहिए। अब हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो जिनके पास पहले से LMS था, पहले से ब्लेंडेड लर्निंग बहुत एडवांस थी, उन्हें कोई ऐसा बड़े प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े जैसे हमारे जैसे छोटी यूनिवर्सिटी को करने पड़े। हमारे पास फाइनेंसेस का इशू है, हमारे पास रिसोर्सेज का इशू है जो कि हम ओवरकम कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने हमें अभी पैसे देने का भी वादा किया है ताकि हम मजीद बेहतर से बेहतर सर्वर दे सकें और बच्चों तक एक्सेस हासिल कर सकें। तो हमने उन यूनिवर्सिटीज से कहा जैसे लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, उनका जो सारी बुक्स थी जो कि क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चों का आना और उनको एक्सेस करना इंटरनेट के ऊपर बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने उनसे गुजारिश की कि जी आप करते हैं, उनने सबके लिए ही वो ओपन कर दिया और अब बच्चों को ये कम अज कम मुश्किल नहीं है कि वो किस तरह से बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। सीधा हमारे टीचर्स जो हैं वो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करते जा रहे हैं और साथ साथ मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो इस चीज से थोड़े से यूज्ड हो।
तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और खासतौर पर ख्वातीन के लिए ये जो डिस्टेंस लर्निंग है और ये जो ऑनलाइन लर्निंग का सिलसिला है या ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला है, आप समझती हैं किस लिए ज्यादा बेहतर सिस्टम साबित हो सकता है फ्यूचर में भी?
जी, मैंने ये बात काफी महसूस की है खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लर्निंग के तो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो ऑन कैंपस पढ़े। जितने भी लोगों ने बच्चों ने मेरे से रब्ता किया स्टूडेंट्स ने वो चाहते हैं कि ऑन कैंपस ज्यादा उनकी जो है ये टीचिंग एंड लर्निंग हो। इसी तरह टीचर्स का भी मुझे यही वो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव भी मैंने देखा क्योंकि कुछ खातीन जो छोटे बच्चों के साथ काम करती हैं वो वर्किंग फ्रॉम होम को बेहतर समझ रहे हैं। उनके लिए प्रेफरेंस ये है कि हम घर से काम करें। और कुछ इसमें मेल भी है, मेरा ख्याल है विद यंग फैमिलीज उनको वो ज्यादा कन्वीनियंस लगता है उसके वो वहाँ घर पे बगैर ऑफिस आए और ड्राइव करके और रश आवर्स को गुजरते हुए अपने अदालत तक पहुंचे। तो वो हमने जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, हमारी मजबूरी थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस कम्प्लीटली लॉकडाउन में बंद था, सिर्फ स्केलेटल स्टाफ के साथ जो कि बहुत जरूरी था वो आते रहे, बाकी लोग नहीं आए। यानी 70 अगर डेज हम लोग लॉकडाउन में थे तो उसमें से कोई मुश्किल से 4 दिन या 5 दिन या 7 दिन कुछ लोग आए जो कि ज्यादातर जो है वो लॉकडाउन के अंदर है. तो ये डेफिनेटली यंग फैमिलीज के साथ कुछ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी ये ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ज्यादा ये प्रेफरेंस है टू वर्क फ्रॉम होम. फैकल्टी मेंबर्स ज्यादातर ये समझती हैं बेहतर जिनने मुझसे रब्ता किया कि वो डे केयर फैसिलिटी हो और वो ऑन कैंपस आके पढ़ाएं तो इट इज ईजियर फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक अवे फ्रॉम देयर डेली हाउस होल्ड चोर्स एंड सॉर्ट ऑफ गिव अ जिसे कहते हैं ना एक स्टॉप देके तो फिर वो एक और अपने एक और जिसे कहते हैं उसमें आ जाती मोड में. तो उनके लिए वो ज्यादा बेहतर है. बाकी जो बच्चियां हमारी कुछ लड़कियों ने जिनने कॉन्टेक्ट किया जो दूर दराज इलाके में उनका ये ख्याल था कि ब्लेंडेड लर्निंग जरूर होनी चाहिए और वो इसको बड़ा यूजफुल भी समझ रही है खासतौर पर एसिंक्रोनस जो लेक्चर्स अवेलेबल है जो उन्हें पहले नहीं थे कि टीचर की अगर समझ नहीं आती या किसी वजह से वो लेक्चर मिस कर गई है किसी वजह से मिस हो गया है तो वो फिर वो आराम से अपने LMS की पे जाके अपना कोर्स खोल के उस लेक्चर को सुन सकती और कोर्स की कंप्लीशन का भी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमें भी फायदा है. हमें पता है कि टीचर क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से कि क्या पढ़ा रही हैं क्या उसके अंदर एग्जांपल्स दे रही हैं अपनी उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है उनकी असाइनमेंट्स किस किस्म की उनकी डेप्थ क्या है उनकी क्वालिटी क्या है. तो एक जो क्वालिटी कंट्रोल है वो भी इस डिजिटलाइजेशन से बेहतर होता है क्योंकि आप हर टीचर के क्लासरूम में नहीं जा सकते लेकिन अगर क्लासरूम अवेलेबल हो टू एवरीवन ऑनलाइन तो आप डेफिनेटली एक्सेस लेके रैंडमली ये सब देख सकते हैं कि कौन से टीचर्स जो हैं वो बेहतर तौर पे इस टूल को इस्तेमाल कर. जो IT टीम है हमारी विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान इज ब्लेस्ड विद द बेस्ट IT टीम. हमने वेब टेलीविजन भी शुरू किया है वेब TV भी रेडियो भी शुरू किया है ताकि जो बच्चियां दूर दराज इलाके में हैं उनको रेडियो के थ्रू या अभी हम ये सारे काम कर रहे हैं कुछ चीज ऑल इन द प्रोसेस बट द वे इट इज शेपिंग अप इज वेरी इनकरेजिंग. पोस्ट कोविड में मैं देखती हूँ ज्यादा ब्लेंडेड लर्निंग होगी और वर्किंग फ्रॉम होम वुड बी अ नॉर्म देन. तो अब ये है कि वी आर लर्निंग थ्रू मोर जैसे कहते हैं ना एक हमारा ये लर्निंग का चल रहा है सिलसिला वी आर लर्निंग एज वी आर गोइंग.
शुक्रिया डॉक्टर उज़मा कुरैशी. आप वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट वेमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की और आपने बड़ी तफसील से बताया कि हायर एजुकेशन को अब डिजिटलाइजेशन करने का प्रोसेस किस तरह जारी है और इसका फ्यूचर क्या है एजुकेशन में. तो आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपका बेहद शुक्रिया.
ताज़ा तरीन खबरों खुसूसी फीचर्स टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील. आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में अब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं डॉक्टर साइमा हामिद फातिमा जिना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से टेलीफोन पर. तो इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा हामिद साहिबा.
जी वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, थैंक यू.
डॉक्टर साइमा बताइए कि इस वक्त जो ये एजुकेशन ऑनलाइन का सिलसिला जारी है यूनिवर्सिटियों में कुछ तो पहले से भी ये सिस्टम मौजूद था ब्लेंडेड किस्म की तो तालीम जारी थी इस वक्त क्या सूरत हाल है तालीमी इदारों में ऑनलाइन एजुकेशन की.
देखिए यास्मीन ये वाला इनिशिएटिव अभी अब देखिए COVID-19 के इस ग्लोबल पेंडेमिक की सिचुएशन में हायर एजुकेशन कमीशन ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत ही शुरू में जब ये सिचुएशन का सामना हुआ तो तमाम वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज वर इनवाइटेड फॉर अ मीटिंग और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मतलब डिलिब्रेशंस हुई डिस्कशंस हुई और उसमें इनिशियली जो इतना बायन नहीं था लोगों का क्योंकि आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में ज्यादा अच्छे तरीके से ऑनलाइन टीचिंग या ब्लेंडेड मोड्स ऑफ लर्निंग पे काम हो रहा था. लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि बहुत सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज स्पेशली उन्होंने अपने जो उनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स जिस लेवल पे भी थे बड़े एक्सपर्टाइटेड तरीके से उनको फंक्शनल लेवल पर लेकर आए. कुछ कहीं पर वहाँ पहले फंक्शनलिटी लेवल जिस पॉइंट पे भी थी ہر کوئی اس کو استعمال نہیں کر رہا تھا. تو اب یہ شروع میں تو لگا کہ اچھا جی یہ دو تین ہفتے کی بات ہے, اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے اور دوبارہ ہم فیس ٹو فیس ٹیچنگ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن جون جون یہ سچویشن بڑھتی گئی اور ساتھ ساتھ ریئلائزیشن بھی آتی گئی کہ یہ اچانک حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے, تو یہ آل لیولز پہ نا یہ ہر ایک کا بڑا اس پہ انپوٹ رہا ہے. یونیورسٹیز نے اپنے طور پر بھی یہ چیز دیکھی, جہاں پر نہیں ایل ایم ایس ایس فنکشنل تھے وہاں پر کام شروع ہو گیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ایک سارا سروے کروایا کہ مختلف یونیورسٹیز کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم پرو ایکٹیو ایکشنز لیں. اور یہ جو ٹائم تھا جی جون 1 تک کا, وہاں اس انٹرم فیز میں تمام یونیورسٹیز کو ایڈوائز کیا گیا کہ آپ اپنی دیکھیں کہ آن لائن کوالٹی ٹیچنگ کیسے کر سکتے ہیں, اور کچھ انہوں نے کرائیٹیریا سیٹ کر دیے. مثال کے طور پہ ہماری بھی یونیورسٹی نے اپنا اسسمنٹ آئی ٹی کا دیکھا, اس میں جو ہم پہلے وہ اپنا سسٹم اس طرح 100% نہیں استعمال کر رہے تھے, اس پہ فیکلٹی کی بھی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ شروع کروائیں. ہر ایک نے اپنے آن لائن کورسز شروع کیے, کچھ لوگوں نے وہ پائلٹ ٹیسٹ کیے. تو یہ سارا کچھ جون میں کام شروع ہو گیا, آئی مین لائک مئی میں کام شروع ہو گیا, اور اب یہ فل سوئنگ جون سے بہت سی یونیورسٹیز نے اپنا کام آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی ہے. شروع میں جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی طرف سے بھی کچھ ریزسٹنس آئی, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کی کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں. بہت سے آپ نے شاید دیکھا ہوگا, بہت سے اخبار میں بھی اس پہ تبصرے شائع ہوئے. جینون قسم کے پرابلمس تھے, کنیکٹیوٹی کے ایشوز تھے. تو ابھی ریسنٹلی چیئرپرسن اے جی سی ڈاکٹر طارق بنوری نے بھی ایگزامینیشن پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنے طور پہ دیکھے کہ آپ ایگزام کا بھی سلسلہ اس نئے طریقے میں آپ کس طرح کر سکتے ہیں. تو ہماری بھی یونیورسٹی نے آن لائن ٹیچنگ کی ایک پالیسی بنائی ہے, اس پہ تمام فیکلٹی کو ٹرین کر دیا ہے. ہم یہاں تک کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ہم نے اورینٹیشن کلاسز لی, اور اس کے بعد اب ہم گریجولی جو کورس تیار ہو جاتا ہے وہی آفر ہونا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جی اگر آپ کہیں کہ جی وہی کوالٹی آف ٹیچنگ ابھی آ رہی ہے, تو دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے انیشل ہیکپس آئیں, لیکن وی آر کمیٹڈ ٹو آن لائن ٹیچنگ, اور ہمارا یہی مینڈیٹ ہے کہ جی ہم وی ول لرن ایز وی گو الانگ. جو پرابلمس آتے ہیں ان کو ایڈریس کریں گے, اور اس لحاظ سے ہماری جو انٹرنلی یونیورسٹی کے اندر بھی مختلف کمیٹیز اور سینئر جو مینجمنٹ ہے وہ بڑے ایکٹیولی اس میں انوالوڈ ہیں. اور دوسری طرف جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی اس طرح کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تاکہ آپ باقی بھی یونیورسٹی سے ایک دوسرے کا سپورٹ ہم مطلب مل سکے, اور ہم یہی دیکھیں گے کہ جی کس طریقے سے ہم نے انڈر آر سرکمسٹانسز اینڈ ود ان آر ریسورسز ہم کس طرح بہترین طریقے سے اپنی ٹیچنگ کنٹینیو کریں, کیونکہ
معاملہ ایک دم ختم ہونے والا نہیں ہے. بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب محمد صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ وائس چانسلر ہیں فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی کی, آپ کا بے حد شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اور کالجوں کے کچھ طالب علموں کو, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت آن لائن ایجوکیشن کے اس پروسیس سے کس طرح استفادہ کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, اور وہ اسے مستقبل کے ایک مستقل موڈ آف ایجوکیشن کے طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. شامل کرتے ہیں فرخندہ ہارون کو, جو یونیورسٹی گجرات سے زولوجی میں ایم ایس سی کر چکی ہیں اور ورچوئل یونیورسٹی پاکستان لاہور سے ایم ایس سی کر رہی ہیں زولوجی میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور گھر ہے ان کا جہلم میں. تو جہلم سے ہم بات کرتے ہیں ان سے ٹیلی فون پر. السلام علیکم فرخندہ ہارون صاحبہ. فرخندہ کچھ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں جب کہ سب لوگ گھروں سے پڑھ رہے ہیں, ڈسٹینٹ لرننگ جاری ہے اور آن لائن ایجوکیشن جاری ہے,
आप किस तरह पढ़ रही हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन एजुकेशन की?
एक तो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की। बेसिकली ये डिस्टेंस लर्निंग की ही एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जितनी भी स्टडीज हैं वो ऑनलाइन होती हैं। आप कैंपस जाके, जो रीजनल कैंपस है, हर इलाके का अपना कैंपस है, वहां पे जाके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ना जाना चाहें तो आपके अकाउंट पे, हर स्टूडेंट का उसके रोल नंबर वाइज, रोल नंबर के हिसाब से एक अकाउंट होता है, उस पे आपके सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड हो जाती हैं, आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दी जाती है, सिलेबस पूरा होता है आपके पास, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थीसिस स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी, तो आप अपनी सुपरवाइजर से स्काइप के थ्रू, स्काइप सेशन से भी रब्ता कर सकते हैं और आप उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं।
तो आपके नज़दीक क्या है, फ्यूचर क्या है? अब ये अगर पेंडेमिक खत्म हो जाता है या नहीं भी होता, तो क्या आप समझती हैं कि एजुकेशन को अब ऑनलाइन किसी न किसी अंदाज में, किसी हद तक होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते, बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है सिचुएशन के लिहाज से। देखिए, आपको नहीं पता, जिस तरह पाकिस्तान में भी 60,000 को क्रॉस कर चुका है, तो अगर लॉकडाउन खत्म भी होता है तो रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आप कभी भी, मतलब एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाएंगे, 50 प्लस को। अगर आप SOPs को फॉलो भी करते हैं तो आप इसको फैलने से नहीं रोक सकते, आप कभी भी रिस्क को 0% पे नहीं ला सकते। तो जाहिर है इसको हमें अब डेवलप करना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जाहिर थोड़ी सी होंगे प्रॉब्लम्स, जिस तरह जो प्रैक्टिकल वर्क है, लैब वर्क है, उसके लिहाज से, या स्टूडेंट अगर फिजिकली नहीं प्रेजेंट, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, सेमिनार्स नहीं हो रहे या लेक्चर्स नहीं हो रहे, तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शंस कम हो रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें उसका भी हाल सोचना पड़ेगा। उसमें ये होगा कि हम सब ग्रुप्स बना लें, कम स्टूडेंट्स को, डिफरेंट शिफ्ट्स बना लें, कम कम स्टूडेंट्स को लेके चलें। तो ये हमें सिचुएशन के हिसाब से सोल्यूशन ढूंढना होगा, लेकिन जाहिर हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब तक ये सिचुएशन परसिस्ट करेगी, और इसके अलावा आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। सिर्फ कोरोना ही नहीं है, आप नहीं समझते कि आगे कभी कोई और डिजीज आएगी, कभी कोई और इश्यू आएगा।
तो आपका क्या ख्याल है कि अब लाजमी हो जाना चाहिए हफ्ते में एक दिन या दो दिन के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए या तालीम दी जाए?
को शुरू करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे हैबिचुअल हों, उन्हें आदत हो जाए। तो बिल्कुल हफ्ते में एक क्या होनी चाहिए, बल्कि इंशाल्लाह अगर ये सिचुएशन खत्म होती है तो यूनिवर्सिटीज को पहला काम ही ये करना चाहिए कि कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन क्लासेस के लिहाज से उनको ट्रेन किया जाए।
बहुत शुक्रिया फरकंद हारून, आपने बड़ी मालूमाती गुफ्तगु की और आपकी तजावीज यकीनन सबको इन पर गौर करना चाहिए। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम। मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान यास्मीन जमील। प्रोग्राम में अब शामिल करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ही PhD करने वाले एक तालिबिन, डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान जहांगीर। कुछ बताइए, तो आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटियों को या कॉलेजों को या स्कूल लेवल पर कितनी इस वक्त ज़रूरत है, लॉकडाउन के तजर्बे से क्या सामने आ रहा है कि ये तालीम जो है डिस्टेंस लर्निंग को कुछ ना कुछ हिस्सा बनना चाहिए कन्वेंशनल एजुकेशन का?
ऐसा है कि जो ये ऑनलाइन स्टडी है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, कि इसके लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास ज़ाया हो जाती हैं उनको हम ऑप्टिमाइज वे में यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर एक बहुत अच्छे ही टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो हमें एक क्लास में, लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, और क्लास की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 30, 40, 50, मतलब एक यूनिवर्सिटी में 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं क्लास में। जब वो एक ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो उनका वो लेक्चर जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त सुना जा सकता है। इसमें बस एक हम ब्लैक कह सकते हैं कि कमी इस चीज की है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है उसकी कमी हो जाती है।
तो बहुत शुक्रिया अदनान जहांगीर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप डेरा गाजी खान से हमसे बात कर रहे थे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान लाहौर से आप एम फिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अब हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जोहा बासित को, जो PhD कर रही हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से, टेलीफोन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो उससे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जोहा बासित।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी बड़ी खैरियत से होंगी और खूब लॉकडाउन में अपनी मेहनत कर रही होंगी और ऑनलाइन पढ़ रही होंगी। कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को कि क्या सूरत हाल है ऑनलाइन एजुकेशन की, खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में।
जहाँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का ताल्लुक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टूडेंट्स जो तो लास्ट सेमेस्टर्स में हैं या फिर जो MPhil और PhD लेवल के, उनको तो ऐसा कोई मसला नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ तक ताल्लुक है टेक्नोलॉजी को यूज करने का। लेकिन जो BSc के बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर्स में हैं, उनको टेक्नोलॉजी का अभी इतना वो वेल इक्विप्ड नहीं थे जब लॉकडाउन हुआ, बिकॉज जब अभी वो सिर्फ पॉलिसी उठ के आए थे और ये सब कुछ हो गया और उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस वो कर रहे हैं। लेकिन एज फार एज द स्टूडेंट्स ऑफ सिंध, बलोचिस्तान और KP के कंसर्न, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि PU के अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उन एरियाज में नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। इवन अगर मैं पंजाब ही की बात करूँ, तो अगर आप साउथ सदर्न पंजाब की तरफ चल जाए, मुल्तान, बहावलपुर वाले एरियाज की तरफ, या फिर पंजाब के थोड़े से विलेजेस वाली साइड पे चले जाए, तो वहाँ पे नेट अवेलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे नेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इवन पर्सनली आई नो सच केसेस जहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को यही कहना चाहिए कि हमारे पास नेट ही नहीं है, तो हम क्लासेस कैसे ले सकते हैं। दूसरे ऑनलाइन केसेस के अंदर ठीक है, एक तरफ यू शुड गो टू द डिजिटलाइजेशन, लेकिन अगर आप डिजिटलाइजेशन जा रहे हैं तो फिर अपने फैसिलिटीज को भी वैसे ही इम्प्रूव करें। अगर आप USA, UK को या कनाडा की तरफ जा रहे हैं कि ठीक है वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आप भी वैसे मैनेज करना चाह रहे हैं, यस दैट्स गुड कि आप एक एजुकेशन को बिल्कुल ब्लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कीप इन द माइंड कि फिर आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। या तो फिर आप उन एरियाज में भी वैसे ही नेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जैसे सब एरियाज में है, जैसे लाहौर या इस्लामाबाद कराची में जो एरियाज वेल डेवलप्ड है, उनके अंदर अगर आप नेट फैसिलिटीज उनको करना चाहेंगे, कम्पीट करना चाहेंगे, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। और बिलीव यू ऑनलाइन सिस्टम के अगर आप एग्जाम लेंगे तो कभी भी किसी भी स्कूल, चाहे वो PhD लेवल का, और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑलवेज विलिंग टू चीट। लेकिन जब आप एक पेपर ले रहे होते हो, खुद लेते हो, तो यस कम से कम वो खुद मेहनत तो करते हैं। इस तरह तो उनको पता होगा कि हम एक व्हाट्सएप पे किसी से भी पूछ कर कर सकते हैं, कौन मेहनत करेगा। ये वो एग्जाम होते हैं जिनके बाद आप फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे होते हैं, लाइक BA, BSc के बाद या मास्टर के बाद आपने किसी ना किसी जगह पे सर्च करना होता है, और उस जगह पे ही एग्जाम में इस तरह होगा और देन व्हाट विल बी डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं यही कह रही हूँ कि एटलीस्ट एजुकेशन कंटिन्यू, एजुकेशन का ब्रेक लॉक नहीं करें वो ठीक है, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन ना करें। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है, एग्जाम्स ऑनलाइन बिल्कुल नहीं आने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट वुड बी लॉस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। अगर बहुत ज्यादा भी केस होता है तो फिर वो दूसरी तरफ देखने वाली बात है, लेकिन जहां तक आप बाकी पूरी कंट्री SOPs के थ्रू खोल रहे हैं, तो आई थिंक सो कि SOPs के थ्रू एग्जाम्स लिए जा सकते हैं।
ठीक ठीक ठीक। जोहा बासित, आपने बड़ी अच्छी तजावीज दी। PhD आप कर रही हैं बायोलॉजिकल साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से, और आप समझती हैं कि इम्तिहान कम अज़ कम ऑनलाइन नहीं होने चाहिए, और SOPs को फॉलो करते हुए जिस तरह के दूसरे काम SOPs को फॉलो करते हुए हो रहे हैं, इनको भी ज़रा डिले कर दिया जाना चाहिए, लेकिन होने चाहिए, यानी सेंटर्स में जाकर इम्तिहान होने चाहिए, ऑनलाइन नहीं होने चाहिए, वरना इससे बड़े खतरात हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी और जो स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं उनका हक मारा जाएगा, कुछ नालायक स्टूडेंट्स आगे आ सकते हैं, तो ये एक अच्छा फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम
और अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और गुफ्तगु सुनवाएंगे अहमद हमजा की, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में एमफिल कर चुके हैं और पीएचडी करने के लिए अब आयोवा जाने वाले हैं। आप बताइए हमारे सुनने वालों को कि इस वक्त जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, वो उनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, या वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, और अगर हो रही है तो वो किस हद तक उससे मुतमइन हैं?
मैम, आई सजेस्ट के स्टूडेंट्स 100% मुतमइन भी नहीं है और 100% डिसेटिस्फाइड भी नहीं है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कोप कर रहे हैं, इस सिस्टम को ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे तरीके से नहीं ले रहे, और सेम पैटर्न टीचर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। कुछ टीचर्स हैं जो इसको इफेक्टिवली कन्वे कर पा रहे हैं, कुछ टीचर्स नहीं कर पा रहे। इसकी बेसिक रीजनिंग यही है कि कुछ टीचर्स थे जो शुरू से ही ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करके चल रहे थे, प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे, ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे थे, मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह और जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक डेली मोशंस, वहां पे उस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे। उनके लिए कन्वे करना, उनके लिए लेक्चर्स डिलीवर करना ज्यादा इजी है, ज्यादा कंपेटेबल है, एज कम्पेयर टू दोज टीचर्स जो बिल्कुल कन्वेंशनल फॉलो कर रहे थे सिस्टम, बिल्कुल जो बुक्स को फॉलो कर रहे थे और जो स्लाइड्स को फॉलो कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। और जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, सेम रूल स्टूडेंट पे भी अप्लाई होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसको इफेक्टिवली कोप कर रहे हैं, मतलब जो पहले भी ऑनलाइन सिस्टम के साथ कॉपरेट कर रहे थे, वो अब आसानी से कॉपरेट कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इन एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं लाइक जूम और स्काइप और मीट एप्लीकेशन लाइक दीज एप्लीकेशन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ टीचर्स डायरेक्टली स्लाइड्स यूज कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे एट दिस मोमेंट, बिकॉज वो टीचर्स जो कैमरा वगैरह या माइक्रोफोन के साथ इतने फेमिलियर नहीं है, उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज है कि वो स्लाइड्स यूज करके बच्चों के साथ डायरेक्टली स्काइप पे स्क्रीन शेयर करके बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपना जो लेक्चर वगैरह है या जो भी उनके पास रिकॉर्डेड मटीरियल है वो उसको डिलीवर कर रहे हैं।
तो उनको वो जो इंटरनेट का मसला है इशू, वो उनको पढ़ाई को किस हद तक मुतासिर कर रहा है इस वक्त?
तो यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज, इंटरनेट और लैपटॉप्स और स्पेशली वाईफाई बैंडविड्थ, इस तरह की चीजें पहले बच्चों को पता भी नहीं थी और अब नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं इस चीज को लेकर। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो शहरों में रहने वाले हैं, वो उन बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं और उनके साथ फ्रेंड्स वगैरह बने हुए हैं, जो मतलब ग्रुप्स वगैरह फेसबुक पे बनाए हुए हैं या व्हाट्सएप पे बनाए हुए हैं, तो वो उनको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट या जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया से हैं या बैकवर्ड एरिया से हैं, उनको वाकई बहुत इशू हो रहा है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सिरे से है ही नहीं। तो वहां पे तो अभी लाइन बिछ नहीं है, मतलब लाइन अभी आ रही है और इंटरनेट अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उन एरियाज में तो वाकई बहुत इशू है। So I just hope कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें इंप्रूव करें और जो इन्वेस्टमेंट वगैरह गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो होपफुली सही जगह पे और सही हाथों में जाए, ताकि उसके कुछ फ्रूटफुल आउटकम्स नजर आना शुरू हो। लेकिन जो ये है कि इंटरनेट का मसला है, जब इंटरनेट सिरे से ही नहीं आ रहा, फिर तो वाकई कुछ नहीं हो सकता ना उस इलाके में या उसके, मतलब फिर तो ये है कि वो लोग, वो स्टूडेंट कम्प्लीटली टीवी वगैरह पे रिलाई कर रहे हैं या डिश पे रिलाई कर रहे हैं, तो एज एक्सपेक्टेड आप उन स्टूडेंट से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ज्यादा इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में है या वो ज्यादा लर्न कर रहे हैं।
तो आप के लिए बाकी क्या, आप फिर क्या देख रहे हैं ये डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का आपके नजदीक क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में?
मैम, आई थिंक जो फ्यूचर है वो इतना ही रहेगा कि हम इवॉल्व करें एज सून एज पॉसिबल। अगर लोगों ने इसको अडॉप्ट करना नहीं शुरू किया या लोगों ने इसके इसको स्पेशली कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही उस चीज को लाइटली ले रहे हैं या इतना सीरियसली नहीं ले रहे, या वो ये सोच रहे हैं कि 10-15 दिन में नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह से अटैक हुआ है और लोग इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये किस हद तक जा सकता है। तो अगर सिचुएशन अल्लाह ना करे बहुत ज्यादा खराब होती है, तो होपफुली बच्चों को और पेरेंट्स को और टीचर्स को खास तौर पे इवॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड आई रियली होप के चीजें पॉजिटिव वे में जाएं, एंड आई रियली होप के चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में जाएं और सही तरह से लोग उसको अडॉप्ट करें। तो अगर तो अडॉप्ट किया तो वेल एंड गुड, अगर ना किया तो गॉड नोज, बट
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया अहमद हमजा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔